5. एक साधु ने एक सद गृहस्थ को समझाया, तात यही अवस्था है जब तुम्हें आत्मोत्थान की साधना में जुट जाना चाहिए। घर का मोह त्याग कर समाज को अपने अनुभवों का लाभ श्रद्धा का आनंद लेना चाहिए, लेकिन बुढ़े के मन में नाती पोतों का मोह समाया था। बोला महात्मन, मेरी बिना बच्चे कैसे रहेंगे।
वृद्ध घर लौटा, वृद्धावस्था का शरीर, रात नींद जल्दी टूट गई। उसे लगा बगल के कमरे में कोई बात कर रहा है। ध्यान देकर सुना तो पता चला उसी का लड़का और बहू बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, बुढ़ा दिन रात खासता है, मरता भी नहीं, अपनी टांग अड़ाता रहता है।
अपमान सहकर बुढ़े को समझ आई और तब उसने घर त्यागा। 33. अनीति से सतर्क रहें, अन्याय को रोकें। प्रश्न 1. अच्छाई हो अथवा बुराई हो, वे किस कारण अधिक बढ़ती हैं?
2. हम वस्त्र क्यों पहनते हैं? हम सारा कमाया हुआ पैसा बैंकों में क्यों रखते हैं? यदि हम ऐसा न करें तो क्या होगा? 3. अन्याय और पुण्य दोनों ही किस प्रकार मानवीय प्रगति में सहायक हैं? 4. यह ठीक है कि हमें किसी को ठगना नहीं चाहिए, पर क्या यह ठीक है कि हम किसी से ठगे जाएं? नहीं तो इसके लिए क्या किया जाए? 5. क्या यह ठीक है कि हमें सब कोई पर विश्वास करना ही चाहिए? नहीं तो क्यों? 6. इस समय देवत्व से असुरता का, सज्जनता से दुर्जनता का पलड़ा क्यों भारी है? 7. मित्रों के रूप में शत्रुता करना इस युग का नया फैशन है, किस तरह
सिद्ध कीजिए?
8. हमारी किन दुर्बलताओं के कारण अनीति करने वाले हमें ठग जाते हैं? 9. अनीति से ठगे जाने से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए? 10. क्या अनीति का प्रतिरोध करने से जो हानि होती है, उसके डर से हमें अनीति का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए?
कथाएं 1. चार्ल्स डार्विन बीमार थे तो घर वालों ने एक पादरी को बुलाया और उनसे धर्म संस्कार करा देने का आग्रह किया। पादरी बोला, जो व्यक्ति जीवन भर धर्म का विरोध करता रहा, उसका धर्म संस्कार तभी कराया जा सकता है जब वह ईश्वर में आस्था व्यक्त करे।
डार्विन की पुत्री माथा ने कहा, मेरे पिता जो आजीवन संत की तरह रहे, क्या उसमें उन्हें बिना धर्म संस्कार ही स्वर्ग में स्थान नहीं मिल जाएगा? इस पर पादरी बोला, स्वर्ग तो ईश्वर का घर है, वह अपने विरोधियों को कैसे प्रवेश देगा, कहकर वहां से चल दिया।
2. काला कांका के राजा रामपाल सिंह ने हिंदुस्तान नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। उसके लिए 250, जो उस समय 2000 के बराबर थे, वेतन देकर राजा साहब ने मालवीय जी को नियुक्त किया। राजा साहब शराब पीते थे, इस कारण पहले तो श्री मालवीय जी तैयार नहीं हो रहे थे, पर जब राजा साहब ने वचन दिए कि वे उनसे कभी भी मिलेंगे बिना शराब पिए ही मिलेंगे, एक दिन भूल से राजा साहब शराब पिए ही उनके पास जा पहुंचे।
मालवीय जी ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया और हजार आग्रह करने पर भी दोबारा काम नहीं किया।
3. समुद्र टिटहरी के अंडे बहा ले गया,
इससे उन्हें बड़ा डैक हुआ। दोनों पति पत्नी रेत भर भर कर समुद्र में डालने लगे।
महर्षि अगस्त्य ने पूछा, टिटहरी तुम रेत से समुद्र तो नहीं पाट सकती? टिटहरी बोली, ना पटे ना सही, पर अन्याय के प्रतिकार ही परंपरा को नष्ट नहीं होने दूंगी।
अगस्त्य का मन भर आया और वे सहायता के लिए उद्यत हो गए और अपने तपोबल से समुद्र के 3 चुल्लू में पी गए।
अनीति के विरुद्ध छोटे लोग खड़े हो जाते हैं तो उन्हें चमत्कारी शक्तियों का सहयोग मिले बिना नहीं रहता। 4. शिवाजी के पिता शाह विजापुर नवाब के दरबार में कर्मचारी थे।
एक बार पिता बच्चे को लेकर दरबार में गए और शाह को सलाम करने को कहा। शिवाजी ने कहा, मैं आत्ताई को सलाम नहीं करता। उन्होंने पिता के रोष का भी ख्याल नहीं किया। उनकी इस दृढ़ता का ही फल था कि समर्थ रामदास ने उन्हें चुना और अन्यायी शासकों के विरुद्ध एक शक्ति के रूप में खड़ा कर दिया।
5. लोकमान्य तिलक विदेश जाना चाहते थे, उन्होंने पंडितों को बुलाकर राय ली, सबने उसे धर्म विरुद्ध बताया।
तभी काशी के महामहोपाध्याय ने कहा 5000 रुपये दे तो कोई व्यवस्था निकाली जा सकती है। तिलक ने कहा, पैसों से जो व्यवस्था निकाली जा सकती है। बदल सकती है, उन्हें उसकी कोई खास जरूरत नहीं है।
6. एक स्त्री अपने बच्चे को पीट रही थी,
पड़ोस के एक आदमी ने जाकर रोका तो स्त्री बोली, इसने मंदिर में चढ़ौती के पैसे चुराए हैं। लड़का रोते रोते बोला, मैंने तो एक ही दिन पैसे चुराए, यह तो रोज दूध में पानी मिलाकर बेचती हैं। आदमी हंसा और बोला, स्वयं अनीति पर चलकर दूसरों सदाचारी बनाने की बात सोचने से यही होता है। 7. कबूतर को देखकर बाज गुर्राया, बोला, भाग जा, नहीं तो नोचकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कबूतर हंसकर बोला, महोदय, इसमें क्या बड़ी बात, शक्ति और सत्ता पाकर तो कोई अनीति कर सकता है।
जानू तो तब जब अपनी शक्ति से दुनिया की अनीति रोक सके।
बाज का कोई उत्तर न देते बना।
8. श्री रवींद्रनाथ टैगोर की विद्वता से प्रभावित होकर अंग्रेज ने उन्हें सर की उपाधि दी। उन दिनों स्वतंत्रता आंदोलन की हवा चल रही थी, अतएव अंग्रेज सरकार एक प्रभावशील व्यक्ति को अपने पक्ष में करना चाहती थी। किंतु श्री टैगोर ने यह कर कि जब हमारे देश के साथ अनीति बरती जा रही हो मेरा यह उपाधि ग्रहण कर सकना असंभव है। उन्होंने उस सम्मान को ठुकरा दिया जिसे हजारों लोग पैसा देकर प्राप्त करने को लालायित थे। 9. गुरु गोविंद सिंह का 15 वर्षीय पुत्र अजीत युद्ध करते समय काम आया तो गुरु गोविंद सिंह ने द्वितीय पुत्र जुझार सिंह को बुलाकर युद्ध की आज्ञा दी। पुत्र ने कहा प्यास लगी है पानी पी लूं तब युद्ध में जाऊंगा। इस पर गुरु गोविंद सिंह बोले अनीति और अत्याचार की आग सुलग रही हो तो उसे बुझाने की आवश्यकता सर्वोपरि होती है। पुत्र ने पानी नहीं पिया युद्ध के लिए चल पड़ा और भाई का बदला लेते हुए मारा गया। 10. एक आत्ता एक स्त्री के साथ छेड़खानी कर रहा था तो उस पर मुक्का जमाने के लिए एक युवक आगे बढ़ा। उसके पिता ने रोका बेटा तुझे क्या पड़ी है घर चल। युवक ने पिता को डांटते हुए कहा तुम्हारी जैसी खुदगर्जी ने ही अन्याय बढ़ाया। उसने बढ़कर गुंडे को धक्का दिया और जमीन पर पटक दिया।
34. जो अनुचित है उससे सहमत न हो।
प्रश्न
1. आपके अनीति के पोषण करते रहने से क्या हानियां होती हैं। 2. आज के समाज में हम क्यों देख रहे हैं कि अत्याचार अनीति आदि करने वाले काफी साहस से यह कार्य करते जा रहे हैं। 3. जो मनुष्य अनीति का प्रतिरोध नहीं कर सकता क्या वह मनुष्य कहलाने के काबिल है।
4. हमें मनुष्यता के उत्तरदायित्व का मूल्य किस प्रकार चुकाना चाहिए।
5. लोक श्रद्धा के अधिकारी कौन कौन हैं। 6. संत सुधारक शहीद हम किस प्रकार के व्यक्तियों को कह सकते हैं।
7. अनीति का प्रतिकार करो।
यह भावना मनुष्यों में जागृत करने के लिए हमें क्या प्रयत्न करना चाहिए। 8. यह कभी आपको पिता माता या परिवार वालों की तरफ से अनीति को मानने का आग्रह किया जाए तो क्या आप आग्रह मान लेंगे। यदि नहीं तो आपको उस समय क्या आवश्यक है। 9. क्या आप कुछ पुराने समय के ऐसे उदाहरण दे सकते हैं कि परिवार वालों की अनीतिपूर्ण बातें मानने की अपेक्षा उन व्यक्तियों ने उनसे विद्रोह ही ठीक समझा। 10. अनीति और अविवेक का सामना करने के लिए हमें किन अस्त्रों का उपयोग करना चाहिए।
कथाएं 1. अलाउद्दीन ने देगिरी के राजा रामदेव पर चढ़ाई करने से पहले उनके सरदार कृष्णा राव को अपनी ओर मिला लिया और आक्रमण कर दिया। जब सारी सेना लड़ रही थी तब देशद्रोही कृष्णा राव अलाउद्दीन के लिए जासूसी कर रहा था। इसका पता कृष्णा राव की धर्मपत्नी विरमती को चला तो उसने अपने पति की ही हत्या कर दी।
मरते हुए पति ने कहा यह क्या किया विरमती तुमने। भारतीय स्त्रियां ऐसा तो कभी नहीं करती। हाँ तुम ठीक कहते हो पर भारतीय पुरुष भी तो कभी देशद्रोही नहीं करते। इस समय राष्ट्र की रक्षा ही मेरा धर्म है। रही पतिव्रत की बात सो वह अब लो यह कहकर उसने खुद को भी कटार भोंक ली और पति के साथ ही सती हो गई।
2. हड्डियों का ढेर लगा देखकर राजकुमार जीमूतवाहन ने मित्रविसु से पूछा तात इतनी हड्डियों का ढेर कहाँ से आ गया। इस पर मित्रविसु ने बताया यहाँ प्रतिदिन गरुड़ नाग का भक्षण करता है आज वह नागराज शंखचूर का वध करेगा। जीमूतवाहन यह सुनकर बहुत दुखी हुए। वे स्वयं शंखचूर का रूप बनाकर वहां उपस्थित हो गए।
गरुड़ आया और उन्हें बुरी तरह क्षत विक्षत करने लगा। तभी उधर से शंखचूर आ गया। उसने कहा अरे गरुड़ तुमने राजकुमार जीमूतवाहन को ही घायल कर दिया। गरुड़ सारी बात समझकर बड़ा दुखी हुआ। उस दिन से उसने नागों को मारना बंद कर दिया।
3. राजवेन राज्य मद के कारण अत्यंत दुराचारी हो गए। वह चाहे किसी को कष्ट देने से न चूकते यहाँ तक कि उनने ऋषियों को भी सताना न छोड़ा।
इस तरह असुरता बढ़ी तो ऋषियों ने प्रजा से कहा तुम लोग संगठित होकर ही अन्याय का मुकाबला कर सकते हो।
प्रजा ने संगठित होकर बगावत कर दी और राजा वेन को काटकर अत्याचारों से मुक्ति पाई। 4. शंकराचार्य साधना द्वारा आत्मिक शक्तियों का जागरण और धर्म एवं संस्कृति की सेवा करना चाहते थे जबकि उनकी माँ उन्हें गृहस्थ देखना चाहती थी। उस समय सनातन धर्म मृत प्रायः हो चला था।
दोनों परिस्थितियों की तुलना करने पर शंकराचार्य को धर्म सेवा की ही सर्वोपरिता जान पड़ी। सो एक दिन नदी में स्नान करते समय वे झूठ मूठ चिल्ला उठे माँ मुझे शंकर को सौंप दो तभी बचूंगा नहीं तो मगर खाए जा रहा है। माँ ने बेटे की बात मान ली।
शंकराचार्य बाहर आ गए और समाज की तत्कालीन आवश्यकता की पूर्ति के लिए चल पड़े। 5. दीनबंधु एंड्रूज स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ाते थे। तब प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बाइबल पढ़ना अनिवार्य था। यह श्री एंड्रूज जो अच्छा न लगा इसलिए वे स्वयं ही हिंदू दर्शन का अध्ययन करने लगे।
इन्हीं दिनों एक हिंदू लड़का भी आया जो इस कॉलेज में पढ़ना तो चाहता था पर वह अपने धर्म की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त बाइबल पढ़ने को राजी नहीं था।
उसे प्रवेश नहीं मिल रहा था।
इस पर एंड्रूज ने सरकार से लिखा पढ़ी प्रारंभ की और तब तक नहीं माने जब तक बाइबल पढ़ने की अनिवार्यता समाप्त नहीं करा दी। 6. पिता ने कुछ पैसे दिए और कहा सौदा लिया दुकान करेंगे। बच्चा गया और धन परमार्थ में लगा आया। पिता ने डांटा तो उसने कहा पिताजी मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर संसार में आया है उसे पूरा करना पहला कर्तव्य है। यही बालक आगे नानक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
7. हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा तुम भी मेरी तरह धन संपत्ति अर्जित करो मैं तुम्हारा पिता हूँ मेरी हर बात तुम में माननी चाहिए।
प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिता के नाते आप मुझसे शारीरिक सेवा ले सकते हैं, पर आपकी अनुचित बातों का समर्थन करूँ यह मुझसे नहीं होगा। उन्होंने अपार संकट सहे पर अनौचित्य से कभी सहमत नहीं हुए।
35. औचित्य की प्रशंसा और अनौचित्य की भर्त्सना की जाए। प्रश्न 1. मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा क्या होती है?
2. प्रशंसा द्वारा किस प्रकार लोगों को अच्छे या गलत मार्ग पर चलाया जा सकता है? 3. बुरे लोगों की प्रशंसा से क्या होता है?
4. समाज सुधार के लिए क्या किया जाए? 5. बुरे लोगों की प्रशंसा से आज क्या बुराइयां फैली हैं? 6. अच्छाई को किस तरह प्रोत्साहित किया जाए? 7. संपत्ति को प्रतिष्ठा मिलने से क्या हुआ?
8. दुष्टता के प्रतिरोध में क्या किया जाए?
कथाएं 1. तुर्कीकरा प्रसिद्ध फकीर जकीर नदी के किनारे रहते थे। एक दिन एक सेब बहा चला आ रहा था।
जकीर ने उसे पकड़ लिया, पर खाने को ही थे कि आत्मा से आवाज आई, जो वस्तु तेरी नहीं है तैने कमाई नहीं, उसका उपयोग करना क्या पाप नहीं।
जकीर सेब लेकर उसके मालिक का पता लगाने चल पड़े। सेब बुखारा की राजकुमारी के बाग का था। राजकुमारी को पता चला तो उन्हें बुलाकर कहा, अरे बाबा,
इसको वहीं रख लेते, एक सेब यहाँ क्यों लाए? फकीर ने उत्तर दिया, आपके लिए इस सेब का कोई मूल्य नहीं, पर इसने मेरा तो धन और ईमान ही नष्ट कर दिया होता।
2. शास्त्री जो रेलवे मंत्री थे, तब उनके लिए एक विशेष बोगी तैयार की गई, जिसमें खाना बनाने खाने से लेकर स्नान तक की सारी सुविधाएं थी।
शास्त्री जी को उसका पता चला तो वह बोगी अस्वीकार कर दी, और यह कहकर कि मैं मंत्री हूँ तो क्या मुझे विलासी जीवन जीना चाहिए, कहकर उन्होंने एक साधारण बोगी ही से अपना काम चलाया।
3. छोटी बहन इलाइज के साथ एक लड़का घूमने निकला। मार्ग में नटखट बहन ने एक अमरूद वाले को धक्का दे दिया, उसके सारे अमरूद कीचड़ में फैल कर बेकार हो गए। लड़का अमरूद वाले को लेकर घर आया और माँ से बोला, इस अमरूद वाले को उसके अमरूद के पैसे दे दो। माँ बहुत झल्लाए, पैसे दिए नहीं तो उस युवक ने अपने नाश्ते के पैसे देकर दंड की भरपाई की और खुद ने 1.5 महीने तक नाश्ता नहीं किया। यही बालक आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट बना। 4. सवेरे सवेरे एक 14 वर्षीय बच्चे ने माचिस चाहिए माचिस की आवाज लगाई। एक संपादक ने उसे बुलाकर माचिस लेकर सिगरेट जला ली, पर जेब में देखा तो पैसे फूटे नहीं थे। बच्चे पर हिम्मत से विश्वास करके 100 का नोट देते हुए कहा, -99 रुपये और शेष पैसे शीघ्र लाना। बच्चा वहां से गया तो संपादक जी शाम तक प्रतीक्षा करते रहे, लड़का आया ही नहीं।
संपादक जी कहते जा रहे थे, बच्चे भी धोखेबाज होने लगे। तभी पीछे से एक लड़के ने पुकारा, क्या अमुक बाबू का मकान यही है?
हाँ हाँ आओ, क्या बात है, संपादक जी बोले।
लड़का ऊपर आया, 99 रुपये और पैसे वापस करते हुए बोला, बाबूजी मेरा बड़ा भाई आपको प्रातःकाल माचिस बचे गया था, पर जैसे ही नोट तुड़वाने वह बाजार गया, एक मोटर से उसका एक्सीडेंट हो गया। उसे अभी अभी होश आया है। होश आते ही आपका पता बताकर यह पैसे भेजे हैं। संपादक बहुत प्रभावित हुआ और ऐसे बच्चों के दर्शनों के लिए अस्पताल चल पड़ा, पर वहां पहुंचने तक वेदमूर्ति बालक के प्राण पखेरु उड़ चुके थे।
उसका छोटा भाई रोने लगा।
संपादक को पता चला, इनके माँ बाप तो क्या परिवार में भी कोई नहीं है। उन्होंने छोटे बच्चे को घर चलने को कहा तो उसने घर जाने से इनकार कर कहा, मेरे भैया ने जो आदर्श रखा मैं उसे कायम रखूंगा।
संपादक बच्चों की सत्यता से बड़े प्रभावित हुए।
उस दिन से समाचार पत्रों में ऐसे समाचार उभार पाने लगे, उसी का फल है कि आज जापान दुनिया का सबसे बड़ा ईमानदार देश माना जाता है।
5. रावण राम की बुराई कर रहा था
और सब सभासद उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। तब विभीषण ने कहा, भैया आप राम की बुराई करें, इससे पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि आपने उनके साथ कितनी बुराइयां बरती हैं।
रावण ने क्रोध होकर विभीषण को घर से निकाल दिया, पर विभीषण ने जो बात उचित थी वही कही। 36. सुव्यवस्था ही परिवारों को सुविकसित रख सकेगी। प्रश्न
1. परिवारों को विघटन से क्या हानियाँ हैं?
2. भारतवर्ष में संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली क्यों आवश्यक है?
3. बड़े परिवारों में सुव्यवस्था कैसी रखी जाए? 4. छोटों के बड़ों के प्रति तथा बड़ों के छोटों के प्रति कर्तव्य लिखो।
5. उपार्जन करने वाले लोग कौन से दायित्व अनिवार्य रूप से निभाएं?
6. बच्चों में पारिवारिक व्यवस्था के कौन से संस्कार डाले जाएं?
7. घरेलू व्यवस्था में क्या सावधानियां आवश्यक हैं?
8. संतान सीमित हो क्यों आवश्यक है? 9. कुरीतियों और अंध परंपराओं की हानियां बताओ। 10. परिवार के भावनात्मक विकास तथा अनुभव में वृद्धि के लिए क्या करें?
कथाएं
1. एक गृहस्थ एक साधु के पास गया और बोला, महात्मन मैं दिन रात कमाई करता हूँ, धन की कमी नहीं, परिवार भरा पूरा है तो भी शांति नहीं है। साधु ने पूछा, तात यह तो बताओ, घर में सब लोगों में परस्पर एकता अनुशासन और प्रेम भाव तो है?
गृहस्थ बोला, महाराज यही तो कमी है, उसी से तो अशांति फैल रही है।
साधु ने कहा, तो जाओ और कल से 2 घंटा समय परिवार की व्यवस्था में भी लगाना, धन कमाने में ही मत जुटे रहना।
2. माली ने देखा काफी उग गई तो भी उसने उपेक्षा की। दूसरे दिन घास बड़ी हो गई पर फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया।
फूलों के पौधों की बाढ़ मारी गई। बगीचे में कांटेदार झाड़ झंखाड़ का अंबार लग गया।
माली बड़ा पछताया और सोचने लगा, पहले से ही सावधानी रखता, कांटा छांट करता रहता तो ऐसा बढ़िया बगीचा नष्ट क्यों होता। 3. एक आदमी ने एक महात्मा से शिकायत की, भगवान यह लड़का गुड़ बहुत खाता है, कहने से मानता ही नहीं।
साधु ने धीरे से उसकी पत्नी से पूछा, क्यों जी?
आपके पति तो गुड़ न खाते होंगे। पत्नी बोली, महाराज ये तो लड़के से भी ज्यादा खाते हैं। साधु अब उन सज्जन की ओर देखकर बोले, बिंदु कहने से नहीं, अब पहले तुम ही गुड़ खाना छोड़ो, तुम्हारे न खाने से ही लड़का गुड़ खाना छोड़ेगा।
4. संत दादू के पास स्त्री आए और अपने पति को वश में करने का कवच मांगने लगी। दादू ने कवच देते हुए कहा, देख कवच तो बांधना, पर आज से प्रतिदिन पति के पैर भी छूना और उसे प्यार भी करना।
पत्नी ने वैसा ही किया। एक दिन स्त्री दादू के पास आई और कवच की प्रशंसा करने लगी तो दादू ने कहा, बेटी यह सब कवच का नहीं, तेरी शिष्टता और सज्जनता का फल था। उन्होंने वहीं पर कवच खोलकर दिखाया, उसमें लिखा था, दोष देखी मति क्रोध कर, मन की शंका खोया,
प्रेम भरी सेवा लगन से पति वश में होए। 5. जंगल में कुछ लकड़हारे कुल्हाड़ी लिए बैठे थे। एक वृक्ष ने दूसरे से कहा, बंधु अब अपनी खैर नहीं। इस पर दूसरा वृक्ष बोला, बंधु मस्त रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर में कुल्हाड़े उठे और बैंड काटकर कुल्हाड़ी ठीक करने लगे। अब की बार दूसरे वृक्ष ने ही कहा, बंधु सावधान हो जाओ, अब अपनी खैर नहीं।
पहले वृक्ष ने पूछा, अब क्या बात हो गई?
इस पर दूसरा वृक्ष बोला, फूट पर गई, देखते नहीं अपने ही शरीर का अंग इन कुल्हाड़ियों का बैंड बन गया।
फूट से तो रावण का अंत हो गया था। 6. श्री जगदीश चंद्र बोस कलकत्ता यूनिवर्सिटी में विज्ञान पढ़ाते थे। अंग्रेज अध्यापक जो उनके समकक्ष थे उन्हें अधिक वेतन मिलता था। यह देखकर उन्होंने कहा, जब तक मेरा वेतन भी उतना नहीं होगा
तब तक वेतन ही नहीं लूंगा। इसी से उन्हें आर्थिक तंगी हुई।
वे प्रतिदिन हुगली नदी पार करके यूनिवर्सिटी जाते थे। अब तो नाव के पैसे भी चुकाना मुश्किल था। इनकी पत्नी अवला बसु ने अपनी अंगूठी बेचकर एक छोटी किश्ती खरीद ली और जब तक अंग्रेजों ने उनकी बात न मान ली, अवला बसु खुद ही पति को हुगली के पार नाव से कर ले जाती और लाती रही।
7. एक आदमी शाम को बैठता और घर के सभी सदस्यों को पास बैठाकर दिन भर की बातों का लेखा जोखा लिया करता, फिर कहानियां सुनी सुनाई जाती, बड़ा मनोरंजन होता। यह देखकर एक धनी पड़ोसी सदा हंसा करते, पर कुछ ही दिन में धनी महोदय के घर सब सदस्यों में परस्पर झगड़े फसाद हो गए, मारपीट हो गई और कई जेल चले गए।
तब उस धनी आदमी ने समझा कि परिवारों को सुव्यवस्था रखना कितना आवश्यक होता है। 37. दाम्पत्य जीवन एक आध्यात्मिक योग साधना। प्रश्न 1. आध्यात्मिक प्रगति का आधार क्या है? 2. सिद्ध कीजिए कि दाम्पत्य जीवन आध्यात्मिकता की प्रयोगशाला है। 3. अपनी त्रुटियों को सहज ही कौन सुधार लेता है?
4. योग का अर्थ क्या है? योग कितने प्रकार के होते हैं? 5. क्लेश एवं कलह मिटाने का क्या उपाय है? 6. संतानें किन लोगों की कुपात्र नहीं होती? 7. विवाह की सफलता का आधार क्या है? 8. पाणिग्रहण की महत्ता क्या है?
9. दाम्पत्य जीवन में स्वर्ग उतारने की व्यवहारिक योजना बनाइए। कथाएं
1. च्यवन समाधि में लीन था, उनकी आंखें किसी कीड़े की तरह चमक रही थी, शरीर में दीमकों ने बाबी लगा ली थी।
सुकन्या अपने पिता के साथ वन बिहार के लिए आई हुई थी।
उसने खेलवश ऋषि की आंखें फोड़ दी।
पीछे पता चलने पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने प्रायश्चित स्वरूप वृद्ध ऋषि से विवाह का निश्चय किया। यह बात महाराज को मालूम पड़ी तो उन्होंने सुकन्या का विरोध किया।
इस विरोध के बावजूद सुकन्या ने च्यवन से ही शादी की और यह दिखा दिया कि विवाहों का उद्देश्य शारीरिक सुख नहीं, आत्माओं के विकास में सहयोग देना है। उसकी इस साधना से अश्विनी कुमार बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने च्यवन की आंखें भी अच्छी कर दी और बुढ़ापा भी दूर कर दिया।
2. सावित्री ने सत्यवान को निश्चित रूप से वरण कर लिया। यह समाचार सुनते ही देवर्षि नारद सावित्री के पिता अश्वपति के पास पहुंचे और बताया कि सत्यवान की जन्म कुंडली के अनुसार उसकी आयु अब एक वर्ष ही शेष रही है। अश्वपति ने सावित्री को बुलाकर यह संबंध ठुकरा देने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, नेकी और ईमानदारी का जीवन एक वर्ष ही हो तो काफी है, पर मैं किसी अयोग्य व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया और कठोर पतिव्रत धर्म के प्रभाव से यमराज को भी अपने पति की आयु बढ़ाने को बाध्य कर दिया।
3. विवाह दिवस मनाने का निश्चय हुआ। पत्नी मेरी ने सोचा, पति की घड़ी की चैन खराब हो गई है, उस दिन उपहार में चैन दूंगी। और पति ने निश्चय किया, पत्नी के बालों को संवारने के लिए बढ़िया कंघा नहीं है, कंघा लाने चाहिए। पर पास में पैसे दोनों में से किसी के नहीं थे, अब क्या हो?
पति बाजार गया और घड़ी बेचकर हाथी दांत का कंघा खरीद लिया।
मेरी पत्नी गई तो उसने अपने बाल कटवा दिए और पति की घड़ी के लिए चैन खरीद ली। दोनों घर आए और अपना अपनापन उपहार देने लगे तो चैन के लिए घड़ी थी न कंघे के लिए बाल। एक क्षण दोनों चुप रहे पर परस्पर प्रगाढ़ प्रेम की बात स्मरण करते ही दोनों मुस्करा उठे। चार कबीर अपने दरवाजे पर बैठे ग्रामवासियों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक युवक ने पूछा, महाराज यह तो बताइए कि विवाह करना ठीक होता है या नहीं।
कबीर एक क्षण चुप रहे, फिर अपनी पत्नी को आवाज देकर बुलाया और कहा, देख यहाँ बड़ा अंधकार फैला है, दीपक तो जला कर ले आ। धर्मपत्नी घर गई और दीपक जला कर ले आई। युवक हंसकर बोला, महाराज आप तो विलक्षण हैं ही, आपकी पत्नी भी खूब है,
आप दिन को रात बताते हैं, तो पत्नी ने दीपक लाकर आपकी बात का समर्थन भी कर दिया,
क्या खूब नाटक रहा। कबीर हंसे बोले, नाटक नहीं, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर था। यदि युवक युवती एक दूसरे पर इतना प्रगाढ़ विश्वास रख सके, उन्हें ही विवाह करना चाहिए। 5. स्वामी श्रद्धानंद तब युवक थे। दुर्भाग्यवश उन दिनों उन्हें शराब और वेश्यावृत्ति की लत लग गई।
इन्हीं दिनों इनका विवाह हुआ।
पत्नी असाधारण पतिव्रता और सेवा भामिनी निकली। श्रद्धानंद तब मुंशीराम नाम था, उसे तरह तरह के कष्ट देते तो भी वह अपने कर्तव्य से एक इंच भी न डिगी। एक दिन श्रद्धानंद रात 2 बजे शराब पिए हुए लौटे। पत्नी उनकी प्रतीक्षा में ही बैठी थी, दरवाजा जैसे ही खोला श्रद्धानंद ने उसी पर उल्टी कर दी। तो भी उसको जरा भी घृणा नहीं हुई, रात भर श्रद्धानंद की सेवा करती रही। प्रातःकाल होश आने पर श्रद्धानंद को पता चला कि उनकी पत्नी रात भर न सोई न कुछ खाया, तो उसका मन अपने आप से घृणा कर उठा। उन्होंने सारी बुराइयां उतार फेंकी और आत्मविकास में जुट गए। वही एक दिन आर्य समाज के सुप्रसिद्ध नेता हुए। 6. मांटुंगा के एक फैक्ट्री के मजदूर को उसकी पत्नी प्रतिदिन ताजा भोजन पहुंचाती।
पति की सेवा में एक दिन भी न चूक पड़ी।
किंतु एक दिन मजदूर मध्याह्न में बाहर आया तो पत्नी को न पाकर मशीन चलती छोड़कर घर चला आया। पत्नी तेज बुखार के कारण अचेत पड़ी थी। पति ने उसकी दवा दारू की।
बिना बताए ऑफिस छोड़ देने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया, पर मालिक को पति पत्नी के अदम्य प्रेम की बात का पता चला तो उसे वेतन बढ़ाकर फिर सर्विस में रख लिया गया।
38. पतिव्रत ही नहीं, पत्नीव्रत भी निभाया जाए। प्रश्न 1. मानवत्व की सबसे उत्कृष्ट विभूति क्या है। 2. दाम्पत्य सुख का सच्चा आधार क्या है।
3. धन्य एवं सफल रहस्य किसे कहा जा सकता है। 4. विवाह योग साधना कैसे है।
5. संतान का सद्गुणी होना किन तत्वों पर निर्भर है।
6. छोटे घरों में स्वर्ग का वातावरण कैसे बनाया जा सकता है। 7. पत्नीव्रत की आवश्यकता पतिव्रत से अधिक क्यों है।
8. पतिव्रत का महान आदर्श क्या है।
9. गृहस्थी को सुखी बनाने में पति का दायित्व अधिक क्यों है।
10. गृहस्थ जीवन का मूल आधार क्या है। कथाएं 1. गांधारी ब्याह कर आई तब पता चला कि पति धृतराष्ट्रंधे हैं। एक बार वरण कर लिया तो फिर पति की अनुकूलता ही श्रेयस्कर है। गांधारी ने प्रतिज्ञा करके अपनी आंखों में पट्टी बांध ली और आजीवन कभी भी पट्टी नहीं खोली। उनकी इस पतिव्रत तपश्चर्या का ही फल था कि एक बार युधिष्ठिर के कहने पर जब इन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को पट्टी खोलकर देखा तो उसका सारा शरीर वज्र का हो गया। 2. बुंदेल सम्राट छत्रसाल वेश बदलकर अपनी प्रजा की भलाई देखने जाया करते थे। एक दिन उन्हें एक रूप सी युवती ने रोकर कहा, मुझे आप जैसा ही सुंदर व स्वस्थ पुत्र चाहिए। छत्रसाल युवती का काम विकार ताड़ गए। एक क्षण चुप रहकर बोले, आज से मैं ही तुम्हारा पुत्र हूँ। 3. पूर्वजन के किसी कुकृत्य के कारण कौशिकी को जो पति मिला वह कुष्ठ का रोगी हो गया। कौशिकी ने फिर भी उसकी सेवा में रत्ती भर अंतर न आने दिया।
एक दिन वह अपने पति को कंधे पर बिठाए अंधेरे में गंगा स्नान के लिए ले जा रही थी, उनका पैर साधना लीन ऋषि मांडव्य के शरीर से टकरा गया।
ऋषि ने कुपित होकर शाप दे दिया, इसकी सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। किंतु कौशिकी ने अपने पतिव्रत के बल से सूर्य को भी रोककर जग में यश पाया।
बाद में अनुसुईया के आग्रह पर उसने तब सूर्योदय होने दिया जब उसके पति को जराजीर्ण देह समाप्त होकर दिव्य देह पाने का वरदान मिल गया।
4. किसी साधारण बात पर रुष्ट होकर महाराज प्रसचेत ने अपनी पत्नी को परित्याग कर दिया। उनके इस अहंकार पूर्ण कृत्य से दुखी होकर राजपुरोहित ने उनका साथ छोड़ दिया।
धीरे धीरे बात प्रजा के कानों में पहुंची। लोग स्पष्ट कहने लगे, जो व्यक्ति अपने स्वजन संबंधी की रक्षा नहीं कर सकता वह प्रजा की क्या रक्षा करेगा।
लोग राजाज्ञाओं का उल्लंघन करने लगे। इस स्थिति में पड़ोसी राजा ने प्रसचेत पर आक्रमण कर दिया। प्रसचेत सेना लेकर मुकाबले के लिए चल पड़े। मार्ग में महर्षि उद्दालक का आश्रम पड़ता था, वे महर्षि से मिलने को रुके। पहले तो महर्षि ने शासकोचित स्वागत की तैयारी की, पर तभी उन्हें पता चला कि महाराज ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है, तो उन्होंने स्वागत की सारी तैयारी स्थगित कर दी और उनसे एक साधारण नागरिक की तरह मिले। राजा ने इसका कारण पूछा तो महर्षि ने कहा, राजन पत्नी का परित्याग करना अधर्म है और धर्म से पतित कोई भी क्यों न, उसकी मान मर्यादा वैसे ही नष्ट हो जाती है जैसे आपकी। राजा ने भूल समझी और पत्नी को फिर बुला लिया, उससे उनकी शासन व्यवस्था भी संभल गई। 5. अर्जुन इंद्र के पास युद्ध विद्या का अभ्यास कर रहे थे। इंद्र की अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। एक दिन सामने काम प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया। अर्जुन ने उसे ठुकराते हुए कहा, भद्रे जिस प्रकार पति पत्नी से एक निष्ठा की अपेक्षा रखता है, उसी प्रकार मेरी द्रौपदी भी मुझसे पत्नी व्रत की अपेक्षा रखती होगी। उर्वशी ने शाप दे दिया, पर अर्जुन अपने व्रत से विचलित न हुए।
6. छोटी आयु में बच्चे के विवाह पर पीछे माता पिता बहुत पछताए। लड़की में कुछ बौद्धिक कमी थी, वह बाद में समझ में आए तो माता पिता दूसरी शादी की बात सोचने लगे। युवक को पता चला तो उसने माँ बाप को फटकारते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि यदि मुझ में कुछ नुकसान आ जाए तो मेरी पत्नी भी मुझे छोड़ दे।
अभिभावकों को जवाब देना मुश्किल पड़ गया। यह लड़का और कोई नहीं, दादा भाई नौरोजी थे। 39. संयुक्त परिवार प्रणाली एक श्रेयस्कर परंपरा। प्रश्न:
1. संयुक्त परिवार प्रणाली समाप्त क्यों होती जा रही है?
2. संयुक्त परिवार प्रणाली की उपादेयता पर प्रकाश डालें। 3. संयुक्त परिवार प्रणाली सहकारी व्यवस्था है, सिद्ध कीजिए। 4. कृषि पशुपालन एवं उद्योग धंधों में संयुक्त परिवार को अधिक लाभ क्यों होता है? 5. वृद्ध का मान सम्मान एवं गौरव संयुक्त परिवार में सुरक्षित है, प्रमाणित कीजिए। 6. वसुधैव कुटुंबकम से क्या समझते हो? 7. संयुक्त कुटुंब के कतिपय दोष बताइए। 8. संयुक्त परिवार की आचार संहिता का आधार क्या हो? 9. संयुक्त परिवार की परंपरा को कैसे जीवित रखा जाए? कथाएं:
1. एक किसान के चारों बेटों में झगड़ा हो गया, चारों बंटवारे की जिद करने लगे। पिता ने एक लकड़ी को इशारा करते हुए कहा, तुम लोग इसे उठाओ। सभी लड़कों ने उसे उठा लिया। फिर उसने लकड़ी का बोझ रखकर कहा, अब इसे एक एक करके उठाओ, तो कोई लड़का नहीं उठा पाया।
फिर उसने कहा, सब मिलकर उठाओ। इस बार पहले की तरह ही लकड़ी का गट्ठा तत्काल उठ गया, साथ ही लड़कों को संयुक्त शक्ति का पता चल गया, अतएव उन्होंने बंटवारे का आग्रह छोड़ दिया। 2. एक नन्हा सा गड्ढा आकाश से आ रही एक बूंद को देखकर हंसा, बोला, तुम्हारे आघात से डरता थोड़े ही हुआ हूं, मैं तुम्हें अभी उदरस्त कर दिखाता हूं। बूंद निडर चली आई और उसका सारा परिवार उतरता ही चला आया। बरसात समाप्त हुई तब वह गड्ढा मिट चुका था, वहां एक तालाब बन चुका था। शक्ति का केंद्रीयकरण जहां भी होता है, वहीं ऐसा उपलब्धियां देखी जा सकती है। 3. गोपाल कृष्ण गोखले बाल्यावस्था में बहुत गरीब थे, पर उनकी पढ़ने की इच्छा थी, अतः उनकी एक भाभी गोविंद राव की पत्नी ने अपने आभूषण बेच दिए और फीस भर दी।
गोपाल कृष्ण बोले, भाभी जी आपने यह क्या किया?
वे बोली, यदि हम एक दूसरे के प्रति त्याग का भाव न रखें तो संयुक्त कुटुंब का क्या अर्थ?
घर के सब खर्चों में कमी करके भी गोपाल कृष्ण गोखले को पढ़ाया गया।
गोखले अपने भाई साहब व भाभी के प्रति देवतुल्य श्रद्धा रखते थे।
4. स्कूल के दरवाजे से लौटते देखकर साथी ने पूछा, क्यों लौटे जा रहे हो?
किशोर ने उत्तर दिया, अरे भाई,
आज मैं अपने माता पिता के पैर छूना भूल गया, कहकर वह तेजी से घर की ओर बढ़ा।
साथी ने याद दिलाई, देर हो जाने से स्कूल बंद मिलेगा। उस बच्चे का उत्तर था, अपने माता पिता के आशीर्वाद की तुलना में स्कूल का दंड बिल्कुल नगण्य है। 5. एक लड़का रूठकर माँ बाप से अलग हो गया।
जब उसके संतान हुई तो बेचारी पत्नी को बच्चे की भी देखरेख करनी पड़ती, खाना भी बनाना पड़ता, पति की सेवा भी करनी पड़ती, जबकि दूसरा लड़का अपने माता पिता के ही पास रहा। बच्चा होने पर उसे माँ बाप खिलाते और स्त्री तब भी घर वालों की सेवा में आनंदित रहती। यह देखकर पड़ोसी ने बच्चों को समझाया, देख लो, बंटवारा करने की हानियां और संयुक्त कुटुंब के लाभ तुम्हारे सामने हैं। 40. संतान कितनी और क्यों पैदा करें?
प्रश्न:
1. प्राचीन काल में संतान की संख्या वृद्धि पर जोर क्यों दिया जाता था? 2. आजकल परिवार नियोजन कर संतान की संख्या कम करने की क्यों आवश्यकता है? 3. आज के बालक समाज के लिए समस्या क्यों बनते जा रहे हैं? 4. अपने देश में स्त्रियों के निरंतर गिरने वाले स्वास्थ्य का मूल कारण क्या है? 5. विवाह की आयु में वृद्धि क्यों आवश्यक है?
6. वानप्रस्थ आश्रम का पुनः प्रारंभ किस लिए जरूरी है? 7. जनसंख्या कम करने के व्यवहारिक उपाय क्या हैं? 8. सिद्ध कीजिए कि आधुनिक युग में संतान वृद्धि की कामना एक मूल मान्यता है। कथाएं:
1. एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उनके पास ही चींटियों का भेड़िया रहता था।
चींटियां भेड़िया को हमेशा धमकाया करती, अब भेड़िये ने एक गोल गोल दुर्ग बना लिया।
उधर से जो भी चींटी निकलती दुर्ग में गिर जाती, भेड़िया उसे भीतर ही भीतर खा जाता।
देखते देखते चींटियों का कुनबा समाप्त हो गया।
जंगल में एक सियार रहता था, उसे अपने 100 पुत्र होने का बड़ा घमंड था। एक दिन सबके सब सियार के बच्चे पड़ोसियों को गाली बक रहे थे, उधर से निकला सिंह। उसने समझा, यह सब मुझे गाली दे रहे हैं। एक ही झपटे में उसने बीसियों को पांव से, दसियों को हाथ से कुचलकर मार डाला, जो बचे भी वह अपाहिज और जख्मी।
दोनों कथाएं सुनाने के बाद साधु ने गृहस्थ को समझाया, सोहेतात, बुद्धिमान और समर्थ एक संतान हो वह काफी है, मूर्ख और कमजोर सो नहीं। 2. गांधारी ने कहा, मुझे संक्रांति पर पूजन के लिए हाथी चाहिए। कौरव महीनों इधर उधर घूमे, जो भी हाथी मिला किसी को छोटा, किसी को कमजोर, किसी के पूंछ न होने का दोष लगाते रहे। मकर संक्रांति आ गई पर एक भी हाथी वे न ढूंढ पाए। कुंती ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा पूजन के लिए हाथी चाहिए और अभी चाहिए। अर्जुन ने बाणों की बौछार लगाकर धरती और इंद्रलोक को एक कर दिया। इंद्र ने देखा आज मकर संक्रांति है तो उन्होंने ऐरावत हाथी भेज दिया। गांधारी और कुंती दोनों ने ही उसका पूजन किया।
पूजन करते हुए गांधारी ने कुंती से पूछा, बहन मैंने तो अपने 100 बेटों से एक महापूर्वी हाथी लाने को कहा पर आपने अर्जुन से आज ही क्या कहा। कुंती हंसी और बोली, बहन संख्या में वे 5 हैं तो क्यों, मुझे अपने बच्चों की समर्थता पर पूरा भरोसा है। 3 ऑस्ट्रेलिया में कोई हिंसक जानवर नहीं पाया जाता तो भी वहां खरगोशों की संख्या अधिक नहीं है, ऐसा क्यों? एक जीव शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वहां के खरगोश पानी के छोटे छोटे गड्ढों के पास पानी के लिए, खाने पीने के लिए लड़ते रहते हैं और लड़ मर कर अपनी संख्या आप घटाते रहते हैं।
4 अमेरिका का बिल्ली की सी शक्ल का उपोसम जंतु बहुत बच्चे पैदा करता है।
अपना पूरा कुनबा लेकर वे समुद्र की ओर चल पड़ते हैं। दिन में कौवे चील आक्रमण करके उन्हें नष्ट करते हैं, इसलिए वे रात में छिपते हुए चलते हैं तो भी शिकार होने से नहीं बच पाते। जो किसी तरह बच जाते हैं वे मारे प्यास के समुद्र में कूद पड़ते हैं और डूब कर मर जाते हैं।
5 आचार्य काहुर अपनी धर्मपत्नी सुजाता को जितने दिन वे गर्भवती रही प्रतिदिन वेद उपनिषद सुनाया करते थे। काहुर एक दिन भूल से अशुद्ध उच्चारण कर गए, इस पर गर्भस्थ शिशु ने टोक दिया। काहुर ने नाराज होकर बच्चे को टेढ़ा मेढ़ा कुरूप होने का शाप दे दिया। वाचालता के कारण शाप भले ही भुगतना पड़ा हो पर माता पिता के इन संस्कारों ने बच्चे को महान विद्वान बनाया। यही बालक अष्टावक्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। 6 एक साधु के पास बैठे एक जिज्ञासु ने पूछा, महात्मन शास्त्रों में बहु संतान का आशीर्वाद दिया जाता है, आप क्यों कहते हैं कि संतान कम होनी चाहिए? साधु ने आकाश की ओर देखा, चंद्रमा निकलने में थोड़ी देर थी।
उन्होंने पूछा, आकाश में क्या है?
असंख्य तारे, वह सज्जन बोले, अभी चंद्रमा निकलेगा तब तो महाराज चंद्रमा के सामने सभी नक्षत्र प्रभावहीन हो जाएंगे। बस यही उत्तर है तुम्हारी बात का, समर्थ हो तो एक ही संतान 1000 के बराबर होती है। 41 सुसंस्कृत संतान के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक। प्रश्न 1 सिद्ध करो संतानोत्पादन इंद्रिय लिप्सा नहीं एक महान उत्तरदायित्व है। 2 संतानोत्पादन के साथ साथ पिता के दायित्व क्या हैं?
3 बच्चे समस्या कब बनते हैं? 4 बच्चों को सुसंस्कारी बनाना क्यों आवश्यक है?
5 अभिभावक को शांति व प्रसन्नता कैसे मिल सकती है?
6 बच्चों को सुसंस्कृत बनाने के लिए माता पिता क्या करें? 7 कहते हैं कुसंस्कारी बालक देना राष्ट्रीय अपराध है क्यों?
8 राष्ट्र समृद्ध और यशस्वी कैसे बनता है?
9 प्रजनन की जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए कौन सी तैयारियां आवश्यक हैं?
कथाएं 1 एक स्त्री ने संत सुकरात के पास जाकर पूछा, महाराज अपने पुत्र को पढ़ाना कब से प्रारंभ करूं?
सुकरात ने पूछा, कितने वर्ष का हुआ है वह बालक?
स्त्री बोली, 5 वर्ष का।
तब तो आपने 6 वर्ष की देर कर दी, बच्चे की पढ़ाई तो उसके गर्भ में आने से पहले ही करनी चाहिए।
2 महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को शापवश घर से निकाल दिया। शकुंतला गर्भवती थी, अतएव कव ने कहा, बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो।
पितामह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शकुंतला ने कहा, तात मेरा पुत्र परीक्षित और उपेक्षित समझा जाए मैं यह स्वप्न में भी नहीं चाहती। यह कहकर वे अकेले ही जंगल में रहकर तप करने लगी और ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। 3 मदालसा की कोख में पुत्र आता और वे नियम संयम पूर्वक रहती।
पुत्र के उत्पन्न होते ही वे कहती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिव्यजनोसी। संसार स्वप्न मोहनिद्रा मदालसा वाक्य मुवाच पुत्र, यह संसार माया मोह का घर है वत्स, तू तो शुद्ध बुद्ध निरंजन आत्मा है, अपने आप का कल्याण कर। सभी बच्चे संत सन्यासी होते गए। यह देखकर राजा बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा, एक पुत्र तो ऐसा दो जो राजकाज कर सके। उस दिन से मदालसा ने राजनीति पढ़ना, राजनीति का चिंतन करना, राजकाज में भाग लेकर राजनैतिक संस्कारों का अभिवर्धन किया और उसी का फल था कि अगला पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बना। 4 रुक्मिणी को संतान की इच्छा हुई। अपनी इच्छा उन्होंने भगवान कृष्ण से व्यक्त की तो उन्होंने कहा, यदि ऐसी बात है तो चलो हम कल ही हिमालय तपश्चर्या के लिए चलेंगे। तब की बात सुनकर रुक्मिणी ठिठकी तो कृष्ण ने कहा, प्रिय किसी आत्मा को संसार में लाने का अधिकार तभी मिल सकता है जब उसे संस्कारवान बनाने की क्षमता भी हो। रुक्मिणी ने वस्तुस्थिति को समझ लिया और तप के लिए हिमालय चल दी। तप के प्रभाव से उन्हें प्रद्युम्न जैसे वीर बालक की माता होने का सौभाग्य मिला। 5 एक महात्मा के पास एक सती गई और बोली, महाराज चरणोदक दे तो मेरे गर्भ का बालक भी महान बने। संत ने कहा, बेटी चरणोदक और आशीर्वाद से नहीं, तुम्हारे रहन सहन आहार विहार और आत्मिक शुद्धता से संतान महान बनेगी। 6. कपिल मुनि जिस रास्ते से गुरुकुल जाते, उसमें एक विधवा का घर पड़ता। विधवा की निर्धनता से दुखी होकर वे एक दिन उसके पास जाकर बोले, तुम चाहो तो आर्थिक सहायता का प्रबंध करा दूं।
विधवा ने कहा, मुनिवा आपने भूल की, मेरे तो एक अत्यंत अमूल रत्न है।
मुनि ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, कुछ दिखा नहीं। वे पूछ बैठे, क्या वह रत्न मुझे भी दिखाएगी?
अभी यह बात हो ही रही थी कि उसका पुत्र पढ़कर लौटा। उसने माँ के पैर छूकर कहा, माँ आज भी मैंने अपना पाठ ठीक तरह पढ़ा, लाओ कुल्हाड़ी, अब लकड़ियाँ ले आऊं। कपिल बच्चे के संस्कारों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सचमुच संस्कारवान पुत्र और रत्न में कोई अंतर नहीं। 42. बालकों को जन्म ही न दें, उनका निर्माण भी करें।
प्रश्न
1. अभिभावकों के प्रमुख कर्तव्य क्या हैं? 2. बच्चों का विकास किन बातों पर निर्भर रहता है? 3. शिशु निर्माण के संबंध में रहस्य की बात क्या है? 4. व्यक्ति की सुख शांति के लिए किन तत्वों की आवश्यकता है?
5. बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? 6. गर्भवती के आसपास कैसा वातावरण रखना चाहिए? 7. शिशु जन्म के बाद माता पिता को अपना आचरण कैसा रखना चाहिए?
8. बच्चों का सच्चा शिक्षण कहाँ होता है, वह किस पर निर्भर है? 9. विवाह प्रचलन की सार्थकता किसमें है?
10. प्रयत्न पूर्वक कैसी चेष्टा की जानी चाहिए? कथाएं 1. बेटी बेटे ने शरारत की, एक फल वाले के फल कीचड़ में गिरा दिए। माँ ने फल वाले के पैसे तो चुका दिए, पर लड़के को 3 माह तक नाश्ते के पैसे न मिले। इस कड़ाई का ही फल था कि यही बच्चा आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट बना।
2. एक स्त्री अपने बच्चे को पीटे जा रही थी, लोगों के पूछने पर उसने बताया, इसने मंदिर से पैसे चुराए हैं।
अभी स्त्री यह बता भी नहीं पाई थी कि लड़का बोला, तू तो रोज ही आधा पानी मिलाकर दूध बेचती है, मैंने एक दिन पैसे चुरा लिए तो क्या हुआ? भीड़ में खड़ा एक वृद्ध बोला, जैसे जिसके माँ बाप तैसा उनका बेटा। 3. दार्शनिक इम्पानुएल कांट एक मोची परिवार में जन्मे, पर उनकी माँ तथा पिता ने उनमें ईश्वर निष्ठा, सदाचार, संकल्प शक्ति के तीव्र विचार भरे।
एक दिन कांत चर्च गए, वहां जाकर देखा कि पादरी कहते तो कुछ हैं पर करते कुछ हैं।
बालक का मन झूठे अध्यात्म के प्रति घृणा से भर गया। तब उन्होंने माँ की प्रेरणा से क्रिटिक ऑफ फोर रीजन और क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन लिखे। उन्होंने सारी दुनिया में तहलका मचा दिया। 4. गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में थे।
अन्य लोगों की तरह पुत्र देवदास को भी आश्रम के नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ता।
एक दिन कड़ी बनी।
कुछ लोगों का उस दिन व्रत था, उनमें देवदास भी थे।
उन सबका कड़ी खाने को मन कर आया। उन्होंने देवदास को आगे कर दिया।
देवदास पिता से जिद कर बैठे। बापू ने अपने गाल पर 2 तमाचे मारकर कहा, बेटा बचपन में मेरी आदत ऐसी न रही होती तो तू आज व्रत तोड़ने की हिम्मत न करता। बापू की दृढ़ता के आगे परास्त बच्चे ने व्रत का पालन किया और कभी वचन भंग नहीं किया। 5. रामकृष्ण परमहंस की माताजी वृद्धावस्था में गंगाजी के किनारे रहकर भगवान की उपासना करने लगी।
उनके दामाद ने एक बार बहुतेरा पूछा, आपकी कुछ आवश्यकता हो तो लाऊं,
पर वे मना ही करती रहीं। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा, बेटा नहीं मानते तो एक पैसे का पान लिया।
दामाद अवाक रह गए, बोले, इतना त्याग न होता तो तुम्हारी कोख से रामकृष्ण कैसे जन्म लेते? 6. पांडव मन मारे बैठे थे। कौरवों ने चक्रव्यूह का निमंत्रण भेजा था, उसे भेदन करना केवल अर्जुन ही जानते थे जो उस समय उपस्थित न थे। तब अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता ने मुझे गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन बता दिया था, पर जब वे बाहर निकलने की विधि बताने लगे तो माँ को नींद आ गई, इसलिए निकलने की विधि नहीं जानता। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर 14 वर्षीय अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन करने में सफलता पाई। 43. संतान को स्वावलंबी भर बनाना ही पर्याप्त है। प्रश्न 1. मनुष्य की अपनी संतान के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? 2. अभिभावक अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करें कि वह विलासी, चटोरी एवं अहंकारी न बने?
3. अपने देश में विदेशों की अपेक्षा 2 जिम्मेदारियां और क्या बढ़ जाती हैं? 4. संतान के पालन पोषण के अलावा मनुष्य के और क्या कर्तव्य हैं?
5. मनुष्य को संतान के स्वावलंबी होने के बाद अन्य क्या कर्तव्य करते रहना चाहिए? 6. स्वावलंबी संतान को अपनी बची खुची संपत्ति किस प्रकार अपराध है? 7. प्राचीन काल में संतान किस प्रकार अपना कर्तव्य पूरा करती थी?
8. आज का मानव किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है?
कथाएं 1. राजा महेंद्र प्रताप के कोई संतान नहीं थी। उनकी धर्मपत्नी ने लड़का गोद लेने की इच्छा की।
राजा साहब ने कुछ दिन पीछे सब जगह घोषणा करा दी कि उन्हें पुत्र हुआ है। नामकरण के लिए उन्होंने मालवीय जी को बुलाया।
सबने पूछा, लड़के को लाओ। राजा साहब ने एक कागज निकाल कर दिया जिसमें एक विद्यालय की रूपरेखा थी और सारी संपत्ति उसी में लगाने का प्राविधान। प्रेम महाविद्यालय लव वृंदावन के नाम से इसी विद्यालय ने अनेक राष्ट्रीय नेता दिए। मृत्यु। श्रावस्ती के नगर सेठ चेटियार ने अपने पुत्रों के लिए अपार संपत्ति इकट्ठा करने के उद्देश्य से अपना उद्योग खूब बढ़ाया। अनुचित तरीके से धन कमाने के कारण अपयश का भागी बना। एक दिन उसके एक वेश्यागामी पुत्र ने उसकी चुपचाप हत्या कर दी।
सभी भाइयों में संपत्ति के बंटवारे पर झगड़ा
हो गया।
बंदी बनाकर उन्हें जेल भेज दिया गया और सारी संपत्ति राज्य कोष में जमा कर दी गई। तीन एक बच्चे ने पिता से शिकायत की, पिताजी मेरे सभी मित्रों को उनके पिता अभी भी पैसा देते हैं, आप तो उनके लिए भविष्य के लिए इकट्ठा करते हैं और भविष्य के लिए कुछ करना तो दूर, अभी भी मुझसे मेहनत कराते हैं।
पिता बोला,
बेटा मैं यह नहीं चाहता कि तू भी दूसरे लोगों की तरह मुफ्त धन पाकर शराबी ज्वारी और व्यभिचारी बने। बिना परिश्रम की कमाए ऐसे ही पाप कराती है।
पिता की इस कड़ाई का ही फल था कि यह लड़का इंग्लैंड का धन कुबेर एलियस स्टो बना। फोर एक सगृहस्थ के तीन लड़के थे। गृहस्थ यह नहीं चाहता था कि लड़कों को अनावश्यक धन देकर उनका भविष्य चौपट कर और उन्हें परावलंबी बनाए, अतएव उसने सबसे बड़े लड़के को 1000 बतौर ऋण देकर भी ए
तक पढ़ाया। सर्विस में लग जाने पर उसे किश्तवार लेकर दूसरे को पढ़ाया और उससे भी 1000 का ऋण पत्र लिखा लिया जो तीसरे लड़के के काम आया।
तीसरा लड़का भी पढ़कर नौकरी से लग गया तो उसको दिया 1000 का ऋण लेकर अपनी वृद्धावस्था सुखपूर्वक काटी। लड़के भी बुराइयों से बच गए। फाइव संदीपन के शिष्य सुदामा गुरुकुल चलाते थे पर आर्थिक अभाव के कारण उनको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था।
विद्यार्थियों को बैठने की समुचित जगह भी नहीं थी।
यह बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो उन्होंने अपने पुत्र को मिलने वाली अधिकांश संपत्ति उस विद्यालय को यह कहते हुए कुछ लोग अपने पुत्रों के लिए धन संचय करके रखे और कुछ निर्धन पढ़ भी न सके दान कर दिया। सिक्स इटली की विशाल अब्रोशियन लाइब्रेरी के अध्यक्ष एचिले ने तीन विषयों में डॉक्टरेट प्राप्त की, आजीविका के लिए नौकरी कर ली।
लोगों ने कहा, तुम्हारा धन किसके काम आएगा, विवाह कर लो, तो उन्होंने कहा, कमाई पुत्रों को ही मिले, यह क्या बात। उन्होंने कहा, समाज का हर बच्चा मेरा बच्चा है। यह कहकर उन्होंने एक अनाथ विद्यालय खोल दिया और अपना सारा धन उसी में लगा दिया।
44 पर्दा प्रथा, नारी के साथ बरती जाने वाली एक नरेशन संहिति। प्रश्न,
एक नर और नारी किस तरह एक दूसरे के सहयोगी हैं? दो, अपने समाज में नारी जाति की स्थिति कैसी है तथा इससे क्या हानियां हैं?
थ्री पर्दा प्रथा कहां से प्रारंभ हुई
तथा उसके प्रचलित होने के कारण क्या हैं? चार, अपने यहां पर्दा प्रथा प्रचलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। पांच, नासमझ वर्ग के लोगों के दिमाग में क्या बात घर कर गई है? छह, अमीरी न होते हुए भी अमीरी वे किस तरह व्यक्त करते हैं? सात, विवाहों के अवसर पर अमीरी दिखने की उत्कंठा चरम सीमा पर पहुंच जाती है,
कैसे? एट, अमीरी प्रदर्शित करने वाले स्त्री और पुरुष का समझदार वर्ग पर क्या असर पड़ता है?
नॉट हार्ट बाट और अपव्यय के बजाय बचत का पैसा हमें कहाँ खर्च करना चाहिए?
टेन, सादगी सज्जनता का प्रतिनिधित्व करती है, सिद्ध कीजिए। कथाएं। वन, श्री लाल बहादुर शास्त्री उन दिनों उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री थे। एक दिन वे ऑफिस में थे तब सार्वजनिक निर्माण विभाग वाले उनके घर कूलर लगा गए। शास्त्री जी लौटकर घर आए तो बोले, मंत्री होने का यह अर्थ नहीं कि मैं देश की संपत्ति को विलासिता में उपयोग करूं, यह कहकर उन्होंने कूलर हटवा दिया। टू कौशल नरेश वेतन के अतिरिक्त अपने 500 कर्मचारियों को कीमती वस्त्र भी बांटा करते। एक दिन भिक्षु आनंद का उपदेश हुआ, उन्होंने बताया, मनुष्य को वस्तुओं का सीमित उपयोग करना चाहिए, अधिकार है तो भी विलासिता पूर्ण वस्तुओं का संग्रह न करे। यह सुनकर सभी कर्मचारियों ने अपने राज्य प्रदत्त वस्त्र न लेने का निश्चय किया।
कौशल नरेश आनंद से मिले और पूछा, महात्मन आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, फिर आपने अपने भिक्षुओं के लिए 5-5 शिविरों का संग्रह क्यों कर लिया?
आनंद बोले, तात, कोई भी भिक्षु अधिक वस्त्र नहीं रखता,
उन्हें एक चीवर पहनने के लिए एक उत्तरीय वस्त्र, एक अंतरवासक और बिछौने के लिए एक बचती है, वह इनमें से कोई फटे उसकी स्थानापित कर सकता है।
यह सीमित उपयोग ही जीवन की सच्ची नीति है। थ्री गांधी जी का भाषण समाप्त हुआ। लोग तो उठ उठकर चल दिए पर गांधी जी स्टेज से नीचे कुछ ढूंढने लगे।
पूछने पर पता लगा 2 पैसे का सिक्का नीचे गिर गया है।
उन्हें पैसा ढूंढने में परेशान देखकर एक सज्जन बोले, छोड़िए बापू,
2 पैसे के लिए यदि संभाल न पाऊं तो यह मेरे लिए पाप होगा। यह कर वे फिर पैसा ढूंढने लगे, सिक्का मिल गया तभी वहां से हटे।
फोर रोजेंद्र बाबू कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जा चुके थे, इलाहाबाद में उनका भाषण थे, वहां गए तो लीडर के लिए संपादक श्री सी बाई चिंतामणि से मिलने चले गए। चपरासी को परिचय कार्ड देकर वे बाहर बैठ गए।
चपरासी ने बिना कुछ कहे कार्ड टेबल पर जाकर रख दिया।
श्री चिंतामणि की दृष्टि कार्ड पर देर से गई, जैसे ही देखा दरवाजे की ओर भगे आए और राजेंद्र बाबू से क्षमा याचना करने लगे। राजेंद्र बाबू बोले, और इसमें क्षमा याचना की क्या बात,
इतनी देर में अपने कपड़े सुखा लिए, क्योंकि बदलने के लिए दूसरे कपड़े न थे।
5 जेल में गांधी जी के साथ साथ शंकरलाल जी बैंकर भी थे।
उन्होंने किसी तरह गांधी जी से उनके कपड़े धोने की अनुमति ले ली और कपड़ों में कई बार साबुन लगाकर उन्हें चमकाने लगे। गांधी जी ने यह देखा तो बड़े दुखी हुए और दूसरे दिन से कपड़े स्वयं धोते हुए कहा, तुम दो कपड़ों में उतना साबुन मसल देते हो जितने से चार कपड़े धोए जा सकते हैं।
6 घड़े में पानी भरकर नीचे एक छेद कर दिया गया।
पानी बूंद बूंद कर दिन भर में हौज में टपक गया।
एक बूढ़े सगृहस्थ ने बच्चों को समझाया, बच्चों जिस प्रकार एक एक बूंद रिसने से यह घड़ा खाली हो गया।
न समझ में आने वाला अपव्यय परिवार की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देता है।
45 अपव्यय एक पाई का भी न करें। प्रश्न,
एक धन का उपार्जन किन किन बातों पर निर्भर करता है?
2 क्या आर्थिक क्षेत्र के अनुसार वह व्यक्ति बुद्धिमान कहला सकता है जो अधिक धन उपार्जन करे? नहीं तो कौन व्यक्ति बुद्धिमान कहला सकता है?
3 जिस प्रकार हम उस व्यक्ति को जो काफी अधिक धन उपार्जन करता है तथा काफी अधिक खर्च करता है मूर्ख कह सकते हैं। 4 लोग फिजूल खर्ची किस धारणा के आधार पर करते हैं?
5 कैसे हम किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का स्तर परख सकते हैं?
6 वे कौन से आवश्यक कार्य हैं जिन पर हमें खर्च करना अनिवार्य ही होता है?
7 परिवार के प्रति हमारे क्या आर्थिक कर्तव्य हैं?
8 धन का व्यय करने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? 9 आज के युग में अपव्यय के क्या साधना हैं? 10 पारिवारिक उत्तरदायित्व के अतिरिक्त और हमारे ऐसे कौन से कार्य हैं जिन पर हमें पैसे व्यय करना अनिवार्य है?
कथाएं। 1 हजरत मोहम्मद अपनी पुत्री फातिमा से मिलने गए। पुत्री वेश कीमती वस्त्र और आभूषण पहने उनसे मिलने द्वार पर आई तो हजरत मोहम्मद दुखी हुए और वहां से लौटकर चल दिए। फातिमा पिता के हृदय की बात समझ गई। उसने अपने सारे बहुमूल्य वस्त्राभूषण बांधकर पिता के पास पहुंचा दिए।
पिता ने उस धन को गरीबों में बांट दिया और अपनी पुत्री से मिलने उसके घर की ओर चल दिए।
2 अमेरिका दार्शनिक थोरो को एक महिला ने चटाई, भेंट की चटाई बहुत सुंदर थी पर थोरो ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा, बहन अपने घर को संग्रहालय बनाऊं, इससे अच्छा है आप इसे किसी जरूरतमंद को दे दें ताकि इसका उपयोग तो हो जाए। 3 स्व-0 राष्ट्रपति डॉक्टर 0 राजेंद्र प्रसाद रांची प्रवास पर थे।
पैर में जूते की कील गड़ रही थी अतएव उन्होंने अपने सेक्रेटरी से गौरक्षक जूता मंगाया।
सचिव 19 रुपये का जूता लेकर आया तो राजेंद्र बाबू चिंता में पड़ गए, बोले 10 रुपये के जूते से काम चल सकता है तब फिर इतना महंगा जूता क्यों लाए। सचिव उसे लौटाने चल पड़े तो उन्होंने कहा, अब वहां जाने में मोटर का पेट्रोल और खर्च करोगे, अब ऐसा करो जब गाड़ी उधर से निकले तभी इन्हें बदल लेना। राष्ट्रपति की इस किफायतशारी पर उपस्थित सभी लोग बहुत प्रभावित हुए।
4 गांधी जी ने रेल में सफर कर रही एक स्त्री से कहा, बहन अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती तो कम से कम इन्हें साफ तो कर लिया करें।
स्त्री बोली, क्या करूं बापू,
धोती एक ही है, इसी को आधी धोकर निचोड़ लेते हैं फिर स्नान करके आधी सुखा लेते हैं, आप ही बताइए इसे धोए कैसे। गांधी जी की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, जिस देश में इतनी निर्धनता हो वहां फैशन परस्ती नहीं चल सकती। यह कहकर उन्होंने आधी धोती पहनकर कंबल ओढ़ने की प्रतिज्ञा की और मरते दम तक उसी सरलता से जीवन बिताया। 5 बड़ी देर से कुछ ढूंढ रहे गांधी जी से काका कालेलकर ने पूछा, बापू किस बात के लिए परेशान है?
पेंसिल के टुकड़े के लिए। काका कालेलकर बड़ी पेंसिल देते हुए बोले, छोड़िए उसे, यह लीजिए। गांधी जी ने कहा, अपव्यय किसी भी वस्तु का नहीं करना चाहिए। वही पेंसिल ढूंढकर उन्होंने काम किया।
6 करनाल में नादिर शाह से हारने के बाद मोहम्मद शाह ने संधि कर ली।
बादर शाह दिल्ली आया।
किसी परामर्श के बीच नादिर शाह ने पीने का पानी मांगा, इस पर मोहम्मद शाह ने शादी अदा के साथ नगाड़ा बजवाया। 10-12 नौकर एक कटोरे में जल लेकर कोई उसे पकड़े, कोई मखमली कपड़े से ढके, कोई हवा करते हुए वहां पहुंचे। नादिर शाह ने घबराकर पूछा, यह क्या नाटक है? मोहम्मद शाह ने कहा, हुजूर आला आपके स्वागत में जल लाया जा रहा है। नादिर शाह ने कहा, इस तरह पानी पीते तो ईरान से भारत नहीं आ पाते। कहकर उसने अपने बिश्ती को बुलाया और लोहे के टोप में भरकर भर पेट पानी पिया।
46 धन का उपार्जन ही नहीं सदुपयोग भी ध्यान में रहे। प्रश्न, 1 आजीविका प्राप्त करने से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है?
2 पैसा खर्च करने में किन किन गुणों का होना अनिवार्य है? 3 उन गुणों के न होने से क्या हानियां होती हैं?
4 किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता किस बात पर परखी जा सकती है?
5 व्यक्ति धनवान किस प्रकार बन सकता है?
6 सामान्य आजीविका से भी अपना खर्च किस प्रकार चलाया जा सकता है?
7 अपना बजट हमें किस प्रकार का बनाना चाहिए? 8 हम किन किन अनावश्यक खर्चों को कम करके बचत कर सकते हैं? 9 जेब में रुपया रख के घूमना और उधार लेना किस प्रकार हानिकारक है? 10 अमीरों के रहन सहन की नकल करना किस प्रकार हानिकारक है?
कथाएं।
एक सरदार वल्लभ भाई पटेल विलायत पढ़ने जाना चाहते थे, पर तभी उनके भाई की भी इच्छा हो आई कि हम भी विलायत जाएं, जबकि पैसा बहुत ही थोड़ा था।
आखिर वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई को विलायत भेज दिया और खुद किफ़ायतशारी का जीवन जीने लगे। कुछ दिन में भाई पढ़कर आ गए, तब भाई साहब किफ़ायतशारी का जीवन जीने लगे और वल्लभ भाई पटेल विलायत पढ़ आए। धन का सदुपयोग ऐसे ही सत्परिणाम देता है। तू एक दिन एक मनुष्य आकर साधु को अपना दुखड़ा सुनाते हुए बोला, महात्मन मेरे पास धन की अथाह राशि है, फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ।
मुझे हमेशा यही डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो मैं भिखारी हो जाऊँ। साधु ने पूछा, यह तो बताओ तुम्हारे खर्च के क्या तरीके हैं? उन मनुष्य ने बताया, जितना लड़का चाहते हैं लड़के ले जाते हैं, स्त्रियाँ चाहती हैं स्त्रियाँ ले जाती हैं, फिर मुझे भी 1000 खर्च लगे हैं अपनी शान शौकत बरकरार रखने के लिए।
साधु बोला, बस अभी तक तुमने धन कमाने की कला सीखी, अब जाकर खर्च करना भी सीखो तो सुखी रहेंगे। 3 चिड़िया दिन भर के खाने भर को इकट्ठा कर लेती और दिन भर खेलती रहती।
चींटी उसे समझाती, देख बहन,
कभी अकाल पड़ जाए,
कुछ और हो जाए, इसलिए कुछ भविष्य के लिए भी बचाकर रखा करो। चिड़िया ने चींटी का मजाक उड़ाकर कहा, बहन भविष्य की चिंता तुम ही करो। चींटी तो चुपचाप अपने काम में लगी रही।
चिड़िया खेलती रही।
आ गई बरसात, खेतों में दाना बचा नहीं, तब भी चींटी के पास अन्न था, पर चिड़िया भूख न सह सकी और मर गई।
फोर्थ सेठ के पास अपार संपत्ति थी तो भी वह दुखी था, पर एक मजबूर थोड़ा पाता था, उसी में सारा परिवार मस्त रहता था।
सेठ ने एक दिन एक प्रसिद्ध महात्मा से जाकर यही बातें कहीं और पूछा, मैं दुखी और मजबूर सुखी क्यों है?
महात्मा ने उससे 99 रुपये लेकर रात में चुपचाप मजदूर के आंगन में टपका दिए। दूसरे दिन मजदूर ने 99 की पोटली देखी तो सोचा 100 करना चाहिए, फलस्वरूप उन्होंने इस दिन उपवास रखा, घर के बच्चे कुड़मुड़ाते रहे।
एक दिन में ही खींचतान मच गई।
साधु ने समझाया, देख सेठ,
पैसा पैदा करना समझदारी नहीं, समझदारी उसका उपयोग है। मजदूर कल तक इसी पैसे से कितना सुखी था, पर आज पैसे पाकर भी दहकी है।
5 बसरा का एक व्यापारी रेगिस्तान में भटक गया, कई दिन तक मारा मारा घूमा, तब तक नखलिस्तान दिखाई दिया, भूख से प्राण निकल रहे थे। तभी उसे एक पोटली दिखाई दी, उसने लपक कर पोटली खोली, आशा थी उसमें चने होंगे, पर खोलने पर निकले मोती।
व्यापारी भूख से तड़प तड़प कर मर गया और अपने पीछे एक शिक्षा छोड़ गया कि धन जीवन की मूल आवश्यकता नहीं है,
ठीक प्रकार चले तो मनुष्य थोड़े धन में ही सुखी रह सकता है।
6 एक सेठ धन जमा करते गए खर्च के नाम पर, कानी कौड़ी भी मुश्किल से निकालते। एक दिन तिजोरी में बैठे रुपया गिन रहे थे कि उधर झटके के कारण खटका गिर जाने से तिजोरी अपने आप बंद हो गई।
सेठ चिल्लाते रहे पर बंद होने के कारण किसी ने उनकी आवाज न सुनी। 7वें दिन लड़के ने तिजोरी खोली तो सेठ की सड़ी लाश निकली, जिसने भी सुना कहा अति संचय का यही फल होता है। 48 जेवरों का भौंड़ा फैशन हर दृष्टि से हानिकारक। प्रश्न,
एक पिछले समय में जेवरों के बनवाने के कारणों पर प्रकाश डालिए। 2 अब पैसे को जेवरों के रूप में बदलना हानिकारक क्यों है?
3 वर्तमान समय में भी यदि जेवरों का प्रचलन रहा तो हमारे देश को किस तरह हानि उठानी पड़ेगी? 4 स्वास्थ्य की दृष्टि से भी जेवरों का पहनना हानिकारक है, सिद्ध कीजिए।
5 जेवरों के बनवाने के कारण हमारे परिवारों को क्या हानियां होती हैं? 6 क्या ऐसे कोई कारण है कि जिनके आधार पर हमें यह जेवरों को भोंडा फैशन छोड़ना चाहिए? 7 जेवरों से खुद हमें क्या हानियां होती है? 8 जेवर प्रथा बंद होने से विवाहों की अवस्था में क्या सुधार हो सकता है?
कथाएं,
एक रामलाल और श्यामलाल का बंटवारा हुआ। रामलाल स्त्री के कहने में आ गया और सारी पूंजी जेवरों में फंसा दी। श्यामलाल भी वैसा ही करना चाहता था, पर स्त्री ने समझाया, मुझे जेवर बनवाकर बच्चों का भविष्य नष्ट न करो, इन पैसों से कोई उद्योग करो।
श्यामलाल ने दुकान खोल ली, उसके लड़के भी पढ़ गए, मकान भी बन गया, उद्योग भी चलता रहा, जबकि रामलाल अपनी स्त्री के जेवर ही लिए बैठा था।
2 स्त्री के कहने पर एक आदमी ने उसे 1 तोले की जंजीर बनवा दी। कुछ दिन पीछे स्त्री बोली, इस जंजीर की बिंदिया बनवा दो, दोबारा तुड़ाने में 1 आना सोना जल गया और बिंदिया भी कुछ ही दिन पहनी गई। अब स्त्री ने अंगूठी का आग्रह किया, बिंदिया तुड़वाई गई, तब फिर 1 आना सोना बेकार गया। तब स्त्री ने कानों के कुंडल की बात रखी, 1 तोले सोने का बाहर आना रह गया, तब कुंडल बने। एक दिन स्त्री कहीं जा रही थी कि एक कुंडल खिसक कर गिर गया और शेष पूंजी 6 आने बची। आदमी ने माथा ठोका और कहा, जेवर ने हमारा विवेक ही नष्ट कर दिया।
3 श्री रामानुज शास्त्री मैसूर महाराज के दीवान होकर भी अत्यंत सादगी से रहते,
अपनी आए वे पिछले लोगों की शिक्षा आदि में लगा देते।
एक दिन महाराज के घर की स्त्रियां उनके घर आईं, श्री शास्त्री जी की धर्मपत्नी को सादी वेशभूषा में देखकर उन्हें दुख हुआ।
वे उन्हें अपने साथ ले गईं और अपने घर से कीमती आभूषण पहनाकर पालकी में बैठाकर भेजा।
श्री शास्त्री ने देखा तो घर के दरवाजे बंद कर लिए। बहुत आग्रह पर भी उन्होंने दरवाजा न खोला। बोले, विचारशील होकर भी हम जेवर जकड़े को महत्व देंगे तो सामान्य प्रजा का क्या होगा। धर्मपत्नी वापस जाकर गहने लौटा आई, तभी शास्त्री जी ने दरवाजा खोला। फोर एक व्यक्ति के पास पूंजी थोड़ी थी, पर पति पत्नी खूब प्रसन्न रहते थे।
पड़ोसी को देखकर उन्हें भी जेवर बनवाने की सूझी। जेवर के लिए जा रहे थे तब निगाह एक चोर की पड़ गई। उसने समझा, यह धनी आदमी है, रात से इंत काटी तो जेवर के साथ यह भी ले गए।
वह आदमी बोला, जेवर न बनवाते तो चोरी की नौबत क्यों आती।
पांच हरिजन फंड के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता थी। बापू चिंता में थे कि पैसा कहाँ से लाए, तथा कस्तूरबा ने अपने मंगल आभूषण उन्हें सौंपते हुए कहा, जेवर की प्रथा कभी इसलिए बनी थी कि वह पूंजी समय पर काम आए, सो आप इन्हें ले जाइए और अपना काम चलाइए।
49 मांस मनुष्यता को त्याग कर ही खाया जा सकता है। प्रश्न,
एक आमिष आहार की हानियों पर प्रकाश डालिए। दो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के शब्दों में मांस खाना अपराध क्यों है। तीन मानव प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है।
फोर सिद्ध कीजिए मांसाहार मानव की प्रकृति के विरुद्ध है। फाइव मांसाहार के विरुद्ध विदेशी डॉक्टरों के कथन देते हुए सिद्ध कीजिए कि असाध्य रोगों का कारण मांसाहार है। सिक्स क्या यह सत्य है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। सप्रमाण सिद्ध कीजिए। सेवन विभिन्न धर्मों उपदेशकों के मतों को उद्धृत करते हुए सिद्ध कीजिए कि मांसाहार पाप है। एट ने केवल शरीर अपितु मन की पवित्रता के लिए भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। नाइन मांसाहार निष्ठुरता एवं क्रूरता का प्रतीक है, विवेचन कीजिए। टेन शाकाहारी दीर्घजीवी होते हैं, सिद्ध कीजिए। कथाएं,
एक इंग्लैंड में दोस्तों के बहुत दबाव के कारण गांधी जी ने एक दिन बकरी का मांस खा लिया। उस दिन रात भर उन्हें डस्वप्न दिखाई देते रहे और यह लगा कि पेट में बकरी बोल रही है। उन्होंने अनुभव किया मांस खाना अनैतिकता और जीव हिंसा का पाप है। फिर कभी उन्होंने मांस को हाथ न लगाया।
टू वसई कला आगरे के भिश्ती सुन्नू खां ने एक दिन एक बकरे को कटते देखा तो उनकी आत्मा कांप उठी और लगा कि मांस खाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। उस दिन से सुन्नू खां से चाहे हिंदू हो या मुसलमान सभी को मांस खाना छुड़ाना प्रारंभ कर दिया।
जिन घरों में वह पानी भरते थे कोई भी मांस नहीं खा सकता था।
दसे की बीमारी से 58 वर्ष की आयु में मरे तब तक सुन्नूख ने सारे गांव को निरामिष भोजी बना दिया। थ्री जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक भोज में सम्मिलित हुए।
वे शाकाहार करते थे पर परोसा गया मांस।
सब लोग खाने लगे तब वे चुपचाप बैठे रहे।
परोसने वाले ने पूछा, आप क्यों नहीं खाते। इस उप उन्होंने उत्तर दिया, मेरा पेट कोई कब्रिस्तान नहीं है।
आखिर उन्हें दूध फल और सब्जी दी, तब उन्होंने वही खाया। फोर गुजरात के प्रतिष्ठित कवि झबेर भाई के पिता ने पुलिस वालों को खीर की दावत दी।
गांव वालों ने सारा दूध ले लिया, गया बछड़ों के लिए भी दूध न बचा। सब लोग खीर खाने बैठे, खीर झबेर को भी परोसी गई पर उन्होंने उसकी उंगली तक नहीं लगाई। पिता ने पूछा, क्यों बेटा खीर नहीं खा रहे। झबेर भाई ने कहा, पिताजी गाँव के सारे बछड़े इस समय भूख से तड़प रहे होंगे और हम सब खीर खा रहे हैं। ऐसी खीर गले से नीचे नहीं उतरती, यह भी तो एक प्रकार का मांसाहार ही है। सब लोग लड़के की करुणा से द्रवित हो उठे। उसी समय ग्रामवासियों को दूध का पूरा पैसा चुकाया गया और फिर किसी दिन उस तरह का दूध वसूल नहीं किया गया। पांच संत राघवदास एक घर में गए तो देखा एक महिला एक स्तन में अपने बच्चे को दूध पिला रही है, दूसरे में एक बकरी के बच्चे को। पूछने पर पता चला कि बकरी बाढ़ के कारण बहकर मर गई है और बच्चा ऊपर से दिया दूध पीता ही नहीं।
महिला की करुणा से राघवदास बहुत प्रभावित हुए। उस दिन से उन्होंने घूम घूम कर जीव दया का प्रचार कराना शुरू कर दिया। सिक्स एक पौंड मांस में यूरिक एसिड विष।
कांड मछली में 4 ग्रेन, सुअर में 6 ग्रेन, भेड़ व बकरी में 6 ग्रेन, बछड़े में 8 ग्रेन, चूजे में 9 ग्रेन, गाय विभिन्न अंगों के मांस में 9 से 19 ग्रेन तक, मांस के शोरबे में 50 ग्रेन।
यह विष दिल की जलन, टी
बी, जिगर की खराबी, सांस रोग, गठिया, हिस्टीरिया, अधिक नींद, अजीर्ण, जुकाम आदि रोग पैदा करता है।
डॉक्टर जीरो अलेक्सा हेग, लंदन की रिपोर्ट। 50 तंबाकू का दुर्व्यसन छोड़ा ही जाना चाहिए। प्रश्न,
एक बुद्धिमानों एवं शिक्षकों के व्यसनों में प्रमुख कौन सा व्यसन है, इसे मिटाना क्यों आवश्यक है। दो तंबाकू में कौन दो से विष होते हैं। तीन तंबाकू के सेवन से कौन कौन से रोग होते हैं। चार तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानि क्या करता है।
फाइव तंबाकू खाने वाला अल्पजीवी क्यों होता है। सिक्स तंबाकू पीने वाले के आर्थिक व्यय पर प्रकाश डालिए। सेवन तंबाकू के व्यसन से राष्ट्रीय क्षति कितनी होती है।
आठ विनाश के उत्पादन से क्या समझते हो, इस व्यय को अन्य उद्योगों में कैसे लगाया जा सकता है।
नाइन तंबाकू से अपराध वृत्ति कैसे पनपती है। टेन सभी धर्मों ने नशेबाजी की निंदा की है, सिद्ध कीजिए। तंबाकू का सेवन अप्राकृतिक है। कथाएं, वन एक महात्मा ने जागीरदार को शराब न पीने का उपदेश दिया।
जागीरदार बोला, शराब पीता हूँ, किसी की बहू बेटी तो नहीं ताकता, किसी की हत्या तो नहीं करता।
साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया, सोचा नशेबाजी तो अपने आप ठिकाने लगता है।
जागीरदार एक दिन शहर गया और एक धर्मशाला में टिक गया, साथ में उसकी स्त्री और एक बुढ़ा यात्री भी था।
धर्मशाला में उसने शराब पी।
शराब पीते ही उसे मांस खाने की इच्छा हुई, उसने होटल से मंगाकर मांस खाया। अब विषय भोग की इच्छा हुई पर स्त्री ने कहा, साथ में बुढ़ा है, मुझे लज्जा आती है।
शराबी ने तलवार से बुढ़े को काट डाला और अपनी इंद्रिय लिप्सा शांत की।
सवेरे सिपाहियों ने पकड़कर उसे जेल में बंद कर दिया, तब पता चला नशा सारे पापों की जड़ है।
टूक दो शराबी ताश खेल रहे थे, एक मक्खी आकर एक ही नाक पर बैठ गई, दूसरे शराबी ने चाकू से उसकी नाक काट ली। पहला शराबी बोला, अरे यह क्या कर दिया, दूसरा बोला, मक्खी का अड्डा साफ कर दिया।
तब तक मक्खी दूसरे के कान पर बैठ गई।
अब पहले शराबी ने अपने छुरी निकालकर दूसरे का कान काट लिया।
इस पर उसने पूछा, क्या किया?
पहले शराबी का उत्तर था, वह दूसरा अड्डा जमा रही थी। थ्री एक से अफीम खाते थे, उन्होंने अपने नौकर को भी यह लत लगा दी। एक बार दोनों शहर चले।
रास्ते में एक स्थान पर दोनों ने खाना खाया, अफीम के नशे में याद नहीं रहा, घोड़ा वहीं छोड़कर चलते बने शहर पहुंचे। नशा कम हुआ, एक स्थान पर बैठे को पता चला कि घोड़ा रास्ते में ही छूट गया। फिर दोनों घोड़े की तलाश में लौटे, पसर इस बार अपनी पोटली कहीं भूल गए, उसी में उनके रुपये थे।
वापस जाकर देखा तो वहां घोड़ा न पाया, तब पोटली की याद आई।
दोनों रोने लगे। एक ग्रामीण स्त्री बोली, तुम्हारी ही नहीं हर नशेबाज की यह हालत होती है।
फोर एडवर्ड नामक एक 40 वर्षीय इटालियन मजदूर को खांसी हो गई, उसने डॉक्टर को दिखाया।
डॉक्टर ने बताया, तुम्हें कैंसर होने को है, यदि तुमने तंबाकू पीना न छोड़ा तो कुछ दिन में ही मर जाओगे।
एडवर्ड ने कैंसर का नाम सुनते ही बीड़ी पीना छोड़ दिया।
वह 40 वर्ष और जिया, इस बीच उसने 1000 मजदूरों की बीड़ी पीने की आदत छुड़ाई।
फाइव स्वामी दयानंद ने एक ठाकुर साहब को शराब न पीने का उपदेश दिया। ठाकुर साहब बोले, स्वामी जी क्या करूं, शराब छोड़ती ही नहीं, आप ही कोई उपाय बताएं। स्वामी जी बोले, कल डेरे पर आना, वहीं उपाय बताऊंगा। दूसरे दिन ठाकुर साहब स्वामी जी के पास गए तो देखा स्वामी जी एक खंभे में चिपके खड़े हैं। बहुत देर तक वैसे ही खड़े देखकर ठाकुर साहब बोले, स्वामी जी यह क्या कर रहे हैं। स्वामी जी बोले, क्या करूं भाई, यह खंभा छोड़ता ही नहीं।
ठाकुर साहब हंसकर बोले, यह आप क्या कहते हैं,
निर्जीव खंभा भी पकड़ सकता है।
स्वामी जी बोले, शराब पकड़ सकती है तो खंभा क्यों नहीं पकड़ सकता।
ठाकुर साहब सारी बात समझ गए और शराब पीना छोड़ दिया। जारी रखें।